ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के डायमंड युग के डायमंड हॉल में कौन बैठे? वैसे तो इस डायमंड हॉल में सभी टर्न बाय टर्न बैठते हैं, परंतु आज किनका टर्न है और कौन बैठे? तो बाबा कहते हैं, हम सब बच्चे जानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ युग जो है वो है डायमंड युग। ठीक है, बहन जी कह रही थी कि दिल्ली राजधानी, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बाबा बना रहा है, दिल्ली ठिकर की दिल्ली बन गई है, इसको ठाकर की दिल्ली बना रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन संगम युग पर बाबा ने कौन सा स्थान चुना बताइए? क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ युग है, जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण तो बादशाह है, विश्व महाराजन है, लेकिन जिसको सच्चे पातशाह ने, जिसका इतना बड़ा वैश्विक परिवार है, उसने कौन सा स्थान चुना? राजस्थान चुना, और राजस्थान में भी एक ही पर्वत है बढ़िया, जिसका नाम है आबू पर्वत, आबू अब्बा का घर। इसका नाम ही विचित्र है, दुनिया में कितने भी पर्वतों के नाम होंगे, माउंट आबू जैसा नहीं होगा। उस राजस्थान के संगम पर निवासी बहन भाई, क्या हो गए आप सोच सकते हैं कि श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो गए, कि जहां भगवान ने खुद आकर के अपनी संगम युगी कैंप लगाया, चाहे दिल्ली को परिवर्तन करना है या सारी दुनिया को करना है, उसमें जिनको सहयोगी बनाया वो आप सब राजस्थान हैं, भगवान के राज्य का स्थान, या यह कहें कि बाबा के दिल पे राज्य करने वालों का जिनको स्थान प्राप्त है, वो सब बहन भाई यहाँ उपस्थित हैं। इस खुशी में कि वाह बाबा तेरी कमाल है, लोग तो हमें जोधपुर जयपुर का समझते हैं, हम कौन है? तो खुशी से जरा जोरदार बाबा को याद करके बाबा तेरा शुक्रिया ताली बजाइए। अब रह गई बात अति इंद्रिय सुख के झूले की। जो बच्चा होता है, बच्चे को सबसे प्यारी जगह कौन सी होती है बच्चे के लिए? हम सब बच्चे तो थे ना, भले आप बड़े हो गए हों, आपके बच्चे भी हो गए हों, लेकिन बच्चे को सारे विश्व में सबसे प्यारी जगह कौन सी होती है? हाँ? वो होती है माँ बाप की गोद, माँ की गोद। तो माँ की गोद को में जब बच्चा चले जाता है तो उसको और दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। आप बच्चे को लोभ देकर कोई खिलौना दे दो तो टेम्परेरी उसका ध्यान खिलौने में चले जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर क्या करेगा? खिलौना फेंक देगा, माँ की गोद में जाकर के चैन आता है। तो दुनिया वाले कहते हैं, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ चैन हो, सुख हो। तो बाबा ने हम सबको पहले पहले क्या किया? वो स्थान जहाँ हमें अति इंद्रिय सुख शुरू होता है हमारा, मुझे अच्छी तरह याद है, हम जब पहले पहले मधुबन में आए थे, हमारा अलौकिक परिवार आया था जो अलौकिक परिवार बन गया, तो बाबा का हिस्ट्री हॉल था और उसमें बाबा और मम्मा अपनी संदली पर बैठे थे। टर्न बाय टर्न हमारे लौकिक पिता, हमारी लौकिक माता, फिर मेरा टर्न था, मैं बड़ा भाई था, हम बाबा की गोद में गए। तो वो दिन हमें कितने वर्ष हो गए ज्ञान में चलते हुए, लेकिन वो जो घड़ी थी कि हम बाबा की गोद में गए और अपना शरीर भूल गए, सब कुछ भूल गए, जैसे कोई रुई होती है बिल्कुल हल्की, बड़ी ही सॉफ्ट रुई, उसके अंदर आत्मा पड़ी है, चेतनता पड़ी है, वो जो सीन था अति इंद्रिय सुख का, वो सब कुछ भूल गया। लोक परलोक, शरीर, वातावरण, कहाँ मैं, बस। और आपको पता है कि कुछ समय बाद जब बच्चे बाबा की गोद में जाते थे, तो जब उनका टाइम पूरा हो जाता था तो बाबा पीठ पर थपकी लगाते थे कि बेटा अब उठ, दूसरे का टर्न है। तो ऐसे ही मेरी पीठ पर भी थपकी लगाई, तो मैं उठा, लेकिन दूसरी बार मैं दोबारा और जोर से बाबा की गोद में चला गया कि डबल वो सुख मिल जाए, अति इंद्रिय सुख जो जिंदगी भर याद रहता। तो जिसको जन्म घुट्टी कहते हैं ना, कि किसी बच्चे को जन्म के समय क्या मिला, उसको जब भी मैं याद करता हूँ तो और दुनिया की कोई भी चीज है, हम कहाँ पड़े हैं, क्या है, कुछ नहीं, बस वो सीन जो है वो अति इंद्रिय सुख का झूला, बाबा की गोद का झूला है। आप सबको भी जिस दिन हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने, किसी भी प्रकार से बने, बाबा लौकिक में शरीर में नहीं रहे, लेकिन जब भी बने, वो दिन हमारा, वो घड़ी हमारी, जैसे ज्योतिषी लोग आपकी जन्म पत्री बनाते समय आपका डेट पूछते हैं, टाइम पूछते हैं, तो वो अलौकिक घड़ी से हमारा अति इंद्रिय सुख का जो जन्म है वो शुरू होता है। और उस अति इंद्रिय सुख के जितना हम उसका मजा ले ले, वो हमारे हाथ में है। बीच बीच में क्या होता है, तो बाबा ने कहा हुआ है, हम सबको जन्म मिलते ही हमारा नाम बाबा चेंज कर देता है, हमारे नाम से पहले क्या जोड़ देता है, पद्मश्री नहीं जोड़ता, भारत रत्न नहीं जोड़ता, लेकिन एक नाम जोड़ देता है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ये हमारे जन्म घुट्टी का नाम है। जो ही आप अपने उस नाम में आएंगे, मैं ब्रह्मा कुमार और कुमारी हूँ, अलौकिक हो जाएंगे। तो लोग क्या कोशिश करते हैं, दुनिया क्या कोशिश करती है, उसको भुला के आपका दूसरा नाम लेती है। तो बाबा कहते हैं इससे फर्क पड़ जाता है, वही मैं जिसको ऐसा अलौकिक अनुभव बाबा ने कराया और उस अनुभव में मैं चलता रहा। एक दिन ऐसा आया, लौकिक रीति से मैं एक ऑफिसर बन गया, बड़ा ऑफिसर। अच्छा, हूँ मैं ब्रह्मा कुमार, सेवा भी कर रहा हूँ, लौकिक अलौकिक दोनों कर रहा हूँ, लेकिन लौकिक में मैं बन गया बड़ा ऑफिसर। अब देखिए फर्क क्या हुआ, मधुबन में पांडव भवन में दादी प्रकाशमणि जी को विदेश जाना था, और उस समय थोड़े ही भाई बहन होते थे, तो शांति स्तंभ के इर्द गिर्द जो बने हुए ना बैठने की जगह, वहां सारे भाई बहन बैठ गए थे, और दादी जी को उनसे विदाई लेनी थी टोली देकर के। तो आप जानते हैं कि शांति स्तंभ के बाहर हम अपने जूता उतारते हैं, तो मैं ऑफिसर के रूप में ऑफिसर का ड्रेस पहने हुए जूता उतारा, उसी में जाने वाला था। तो दादी जी ने मुझे कहा टोली की ट्रे पकड़ लो। अचानक मेरे मन में आया, मैं इतना बड़ा ऑफिसर, अब मैं टोली की ट्रे पकड़ू, कोई और पकड़ ले, ये मेरे मन में आया। मेरे मन में आया मुझे ही पता, एक जोरदार झटका जैसे किसी को बिजली का करंट लगता है मुझे लगा, बड़े जोर से, और मैंने कठपुतली की तरह वो ट्रे पकड़ ली। और उसके बाद क्या हुआ कि दादी जी एक एक को मिलते गए, और मेरे मैं ट्रे पकड़े हुए था, उसमें से दादी जी एक एक को टोली देते गए। बाद में मैंने फर्क देखा कि मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख था, अगर उस दिन मैं वो ट्रे नहीं पकड़ता तो जो मेरा अति इंद्रिय सुख का अनुभव और बढ़ना था वो बंद हो जाता, लौकिकता में आ गया मैं। तो क्या देखा कि ट्रे पकड़ने के बाद जब लास्ट में दादी जी ने मुझे टोली दी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई किसी फरिश्ते को कुछ चीज दे रहा है। ना मेरा टोली में ध्यान था कौन सी टोली है क्या है, बस हल्के रूप से, जबकि मेरे लिए प्रसिद्ध था कि लाडले के तौर पे ब्रिज मोहन भाई को दो टोली देनी है, ये प्रसिद्ध था। अब मैं बड़ा खुश होता था कि जब भी कहीं टोली मिलनी है वो कहते थे इसको दो दे दो, अब मैं बड़ा खुश होता था कि मुझे दो टोली मिलती है। उस दिन के बाद मैंने देखा कि दादियां टोली बांटती हैं, उनके बाद उनको तो टोली की इच्छा ही नहीं रहती, बांटकर इतनी खुशी आ जाती है। अब मुझे भी फील हुआ कि मुझे तो टोली की इच्छा ही नहीं है, जैसे दूसरों को देने में मेरी टोली आ गई। वो मैंने अलौकिकता का अनुभव किया कि हम लौकिक और संगम का मतलब क्या है, कि हम लौकिक भी हैं और अलौकिक भी हैं। एक कदम आप रखिए तो आप लौकिक हो जाएंगे, यानी लौकिक में अलौकिक हो जाएंगे, और दूसरे कदम रखिए तो आप अलौकिक में लौकिक हो जाएंगे। अर्थात हम अवतरित भी हो सकते हैं और नीचे से ऊपर जाने का पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अवतरित मैंने अलौकिक, और अवतरित भूले तो लौकिक, तो फर्क इतना है कि आप जानते हैं कि अवतरित होने में मैं खत्म हो जाता और मैं से ऊपर जाने में मेहनत लगती है। किसी चीज को नीचे से ऊपर आप कितना भी ताकत से भेजो तो वापस आ जाती है, लेकिन जो ऊपर से नीचे आई हुई है उसको तो पता ही है कि मैंने टेम्परेरीली आना है। तो मैंने ये अनुभव किया है, आप भी इस बात को देखिए। आज की मुरली का ही टाइटल पढ़ लीजिए, आज की मुरली का मुख्य टाइटल क्या था। बाबा कहते हैं कि बच्चों की भक्ति मार्ग की सारी थकान मैं दूर कर देता हूं, मैं बच्चों को रिफ्रेश करता हूं। कैसे रिफ्रेश करता हूं? ज्ञान से। ये ज्ञान है ही हमारा अलौकिक ज्ञान है, दुनिया वालों को तो पल्ले ही नहीं पड़ सकता, इसकी भाषा ही दूसरी है। और कहा जाता है कि सबसे बड़ा धन ज्ञान धन है, मीरा गाती रही जिसको ज्ञान नहीं भी था, ज्ञान रतन धन पायो। हमें तो बाबा इतना ज्ञान देता है जैसे कि हमारे ऊपर ज्ञान लुटाता रहता है। और सचमुच आपको ज्ञान के आधार से आप आत्मा रूप बन जाए तो आप अलौकिक हैं, ज्ञान को भूल जाए तो आप लौकिक हैं। फिर लौकिक में अलौकिक कुछ भी करते रहो, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे योग लगाते हो और वह भी तुम्हें रिफ्रेश करता है, क्योंकि एक तो हमारा बोझ हटता है पिछला, और दूसरे हमें शक्ति मिलती है, हम अपने आप को समझते हैं जो हम करना चाहें कर सकते हैं। और फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे हम कौन से हैं। अगर हम लौकिक को भूल जाएं, जैसे यहां भी आते हैं तो कईयों को दिन भी भूल जाता है, जिस दिन जाना होता है तो सोचते हैं आज कौन सा फ्राइडे है या सैटरडे है, दिन भूल जाता है, सब चीज भूल जाती है। यहाँ बाबा की तपस्या स्थान है, एक इतना बड़ा बाबा के बच्चों का संगठन है। तो बाबा कहते हैं जो संगम का, वास्तव में संगम का जो स्थान है वो कौन सा है, या तो मधुबन है या सूक्ष्म लोक है। क्योंकि हम सब, ये बाबा ने कहा तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है माउंट आबू, और मेरी तरफ से तुमको ड्यूटी पर मैंने भेजा हुआ है, यहां जाओ या वहां जाओ। लेकिन आप ये नहीं कहते कि मैं जयपुर से माउंट आबू आया हूं, बल्कि मैं माउंट आबू से जयपुर गया। कितना फर्क है। आपने देखा होगा सर्कस में जो झूला झूलते हैं, तो सर्कस में झूला झूलने वाले को बढ़िया किसको गिना जाता है, जो झूलते झूलते एक झूले से जंप लगा के दूसरे झूले में बैठ जाते हैं और झूलने लगते हैं। सब लोग ताली बजाते हैं, खुश होते हैं कि देखो इस झूले में बैठे थे, जंप लगाया, बिना गिरे दूसरे में बैठ गए, और नीचे एक जाला लेके खड़ा रहता है। लेकिन वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उनको नीचे गिरने का मौका ही नहीं होता, तो एक झूले से दूसरे में चले गए। अर्थात हमें परिस्थिति के परिवर्तन से हमारा अलौकिकता के ऊपर असर नहीं आना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने लौकिक घर में या सेवा केंद्र पर या जो मेरा कमरा है उसमें मुझे चैन की नींद आती है, लेकिन अगर मेरा कमरा बदल दो या मेरे कमरे में किसी नए को डाल दो तो मेरी तो नींद खत्म, वो जाए तब मेरी चैन वापस आए। तो ये अलौकिक अति इंद्रिय सुख तो नहीं हम ले सकते ना। मेरे साथ ऐसे हुआ था, एक बार इंद्रप्रस्थ में हमको एक कमरा मिला, उसमें दो भाई रह रहे थे। किसी ने मुझे कह दिया कि ज्यादा भाई बहन आ गए हैं और दादी जी तुम्हारे कमरे में एक और बेड डालने वाली है, किसी ने कह दिया। तो शाम को दादी जी आए कमरों में, आके देखने आते थे कि सब ठीक ठाक है। आए तो मेरे मन में तो ये था कि एक कमरे में दादी किसी और को ना डाल दे, बहुत साल पहले की बात है जब हम नए नए थे। तो मैंने आते ही दादी जी को कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा आप देखिए ना, ये दो कमरे में दो बेड में सारा कमरा भरा हुआ है, तीसरा बेड रखेंगे तो हम स्नान करने कैसे। दादी चुप रही और दादी ने मुस्कुरा करके पूछा सब ठीक ठाक है, जैसे वो करती थी चली गई। रिजल्ट क्या हुआ कि रात को वहां मैं कोई 15 दिन से रहा हुआ था, और उन दिनों में आपको पता है शीशे के थर्मोस होते थे, तो मेरी साइड की टेबल पर शीशे का थर्मोस रहता था जिसमें मैं पानी रखता था। रात को राम से आवाज आई और वो थर्मोस गिरकर टूट गया। मैंने सोचा ये थर्मोस 15 दिन से यही पड़ा है और कभी टूटा नहीं, तो आज कैसे टूट गया, क्योंकि तो मैं डिस्टर्ब हो गया था, अपनी डिस्टर्बेंस के कारण मेरा कोई बाजू वगैरह लग गया और टूट गया। आप देख सकते हैं कि हम अपनी, हालांकि दादी जी ने ना किसी कमरे की बात की ना, पर मुझे ये सूचना किसी ने ऐसे दे दी थी। इसलिए हम अपनी अलौकिकता को कायम रखेंगे तो सारा संगम युग सुबह से शाम तक रात तक हर समय हमारे लिए अति इंद्रिय सुख का झूला है। अगर हमने उसमें थोड़ा अपना मिक्स कर दिया तो गड़बड़ है। इसीलिए मैंने देखा कि जो बाबा कहते हैं कि अति इंद्रिय सुख वाला तेरी गोद का झूला है, तो गोद बच्चा ही लेता है, बड़ा व्यक्ति गोद नहीं ले सकता। हम लोग तो बाबा के अलौकिक बच्चे हैं, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन है, हमारा जन्म भी अलौकिक है, तो मेरे पिताजी भी उसी गोद में बैठे थे, मेरी लौकिक माता भी उसी गोद में बैठी थी। बल्कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया बाद में कि थोड़ा सा ना मैं बाबा की गोद में बैठा मुझे फील हुआ। मैं आर्य समाजी थे, वो आर्य समाज वाले इन चीजों में विश्वास नहीं करते, उनको प्रेम भाव तो होता नहीं, ज्ञान ज्यादा होता, लेकिन वो एडजस्ट हो गए। थोड़ी देर उनको फील हुआ कि मैं ऐसे गोद में गया, लेकिन वो बच्चा बन गए। अगर हम बच्चा हैं तो हमारे लिए बाबा की गोद है, सदा है। और अभी भी गीत बजता है कि तुम्हारा हाथ में मेरा हाथ आ गया, तो हाथ कौन पकड़ता है? आप देखेंगे हाथ बच्चा ही पकड़ता है, बाप उसका हाथ जोर से पकड़ता है कि कहीं मेले में इधर उधर देख के भाग ना जाए। आजकल के तो बच्चे तो होशियार हैं, पहले हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, फिर अनाउंस कराते हैं कि मेरे पिताजी गुम हो गए हैं। आजकल तो ऐसा ही है ना, आप जानते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, या तो बच्चा हाथ पकड़ता है या कोई फ्रेंड हो बराबर का हो, उसका हाथ पकड़ के हम खुशी से चलते हैं। तो बाबा भी कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीजें तीन हैं, जिसके आधार पर हम अति इंद्रिय सुख का सुख ले सकते हैं, क्योंकि उसका आधार हमारा अशरीरी बनना है। तो वो क्या है? तो बाबा ने बताया हुआ है कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी, अर्थात हमारी जो पवित्रता है वो हमारे बॉडी कॉन्शियस से हमें परे रखती है। अच्छा, रियलिटी की रॉयल्टी, क्योंकि हम लोग कई प्रकार के, बाबा कहते हैं भगत हैं, कई प्रकार के योगी हैं, कई ड्यूटी समझ के योग लगाते हैं, कई भय से लगाते हैं कि अगर योग ना लगाया कल को कोई रोग आ गया तो बाबा मदद नहीं करेगा, इसलिए योग लगा लो। कई दिखावे के लिए लगाते हैं, कई प्रकार के हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो योग लगाते हैं। इसलिए बाबा कहता है रियलिटी, कि असली हमारा वो कनेक्शन कैसे रहता है। और तीसरा है संबंध की समीपता, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बाबा को कहते हैं मेरा तो शिव बाबा एक। अभी हम सबको कहेंगे गीत गाओ, सब गाएंगे मेरा तो शिव बाबा एक, लेकिन जो दूसरी लाइन है उसके बारे में क्या ख्याल है? बाबा कहता है मेरा तो शिव बाबा एक, अगली लाइन क्या है आपको पता है ना? उसको हम गोल कर देते हैं, हम कहते हैं मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरे भी मेरे, आप बताओ तो कैसे होगा? इसलिए बाबा कहता है कि आपका जो, क्योंकि ये सारा चीज जो है अलौकिक बनना, इसके पीछे एक ही शक्ति काम करती है जिसका नाम है प्रेम। सुने, आत्मा प्रेम के पेट्रोल पे चलती है, मन भी आपका प्रेम के पेट्रोल पे चलता है। जहां आपका प्रेम होगा आपको एक सेकंड नहीं लगेगा मन को वहां ले जाने के लिए। और ज्यादातर हमारी यात्रा अलौकिक ही होती है, भले हम शरीरधारी हैं, लौकिक दुनिया के शरीरधारी भी अपने जीवन की ज्यादा यात्रा मन से ही करते हैं। ये अलग बात है कि उनको डेस्टिनेशन नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता तो भटकते हैं, लेकिन मन ही भटकता है उनका, बुद्धि भटकती है। इसलिए जहां स्नेह होगा जितना होगा उतना जुड़ा रहेगा। तो बाबा ने हमारे लिए बहुत आसान किया हुआ है कि हमारी हर एक बच्चे की लौकिक जीवन को अलौकिक कर दिया। बाबा ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर में रहो, आप अपना बिजनेस करो, आप अपने सेंटर में रहो, आप छोटे सेंटर में रहो, रिट्रीट सेंटर में रहो, माउंट आबू में रहो, बिल्कुल गद्दी पर आके बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि आपकी स्नेह की लगन कितनी है। आज सुबह भी बाबा ने ज्वालामुखी योग का जिक्र किया था, तो ऐसी लगन जिसमें और कुछ भी ना दिखे, मेन ये दिखे बाकी चीज दिखे ही ना, इसी को कहा जाता है अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख मीन्स वो सुख जिसमें इंद्रियों का कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, ये सुख आपको कहाँ मिल सकता? वो सुख जिसमें इंद्रियों का कोई कनेक्शन नहीं है, क्या वह सुख आपको सतयुग में मिल सकता है? सतयुग में जो देवी देवता सुख भोगते हैं वो इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं या इंद्रियों के बगैर? ठीक है, अच्छा कलयुग की तो बात ही छोड़ दो। तो इसलिए अति इंद्रिय सुख वो सुख है जो आपको स्थूल शरीर द्वारा नहीं मिल सकता। तो क्या आत्मा बन के मिल सकता है? परम धाम में आत्मा रहती है तो परम धाम में भी आपको वो सुख नहीं मिल सकता, उसका नाम शांति धाम है। परमात्मा को स्वयं भी परम धाम से नीचे आना पड़ता है, चाहे वो साकार लोक में आए चाहे वो अव्यक्त लोक में आए। उनको बाबा कहते, बाबा हर्षाया, बाबा को भोग लगाया, बाबा ने वासना ली, बाबा बच्चों का पुरुषार्थ देके ऐसा अनुभव करता है, इस बच्चे की लगन बहुत है, तो कैसे कहता है? तो बाबा को भी अनुभव तब होता है जब बाबा सूक्ष्म शरीरधारी है। अच्छा, तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो ही तब सकता है जब हम सूक्ष्म शरीरधारी हों, सीधी बात है। और सूक्ष्म शरीर हमको केवल संगम पर ही मिल सकता है। इस वक्त सारे कल्प में हमको सूक्ष्म शरीर मिल नहीं सकता, इसलिए अति इंद्रिय सुख हो ही नहीं सकता। बाबा कहते कोई कोई द्वापर से लेकर भगत होते हैं जो बहुत ज्यादा नवदा भक्ति करते हैं, अपने आप को बिल्कुल मरने तक तैयार हो जाते हैं, उनको क्षणिक तौर पे मूर्ति के अंदर चेतनता दिखती है तो अपने आप को भी वो बॉडीलेस फील तो होता है, लेकिन वो एक झलक मात्र है, वो कोई असली नहीं है। अगर मीरा को कृष्ण दिख गए तो असली तो नहीं दिखे ना। इसलिए बाबा कहते हैं असली अति इंद्रिय सुख हम ब्राह्मणों को ही हो सकता है, और हम ब्राह्मणों को ही होता है और संगम पर ही होता है, और संगम पर जहां आप मधुबन बना ले वहां होगा, चाहे आप चल रहे हों, ट्रेवल कर रहे हों, कुछ भी करो, या फिर सूक्ष्म लोक में होगा। अब आप देखिए, इस लोक में किसी को शुगर की बीमारी है, किसी की टांगे नहीं चलती, कोई कुबड़ा होके चल रहा है, हाय हाय कर रहा है, आप सूक्ष्म लोक में पहुंच जाओ, डायबिटीज वाला पहुंच जाए, लंगड़ी टांग वाला पहुंच जाए, झंझट वाला पहुंच जाए, सूक्ष्म लोक में आपके साथ डायबिटीज जाएगी? सूक्ष्म लोक में आपके साथ लंगड़ी टांगे जाएंगी? नहीं जाएंगी, क्योंकि बाबा कहते हैं वहां तुम्हारा फरिश्ता रूप है। अच्छा, सूक्ष्म लोक को छोड़ो, आपको सपना आ गया रात को, ठीक है, अब सपने में आपको अपनी वो हैंडीकैप महसूस होता है? नहीं, सपने में आप भाग भी लेते हैं, उड़ भी लेते हैं, सपने में किसी को हलवा खाना मना है तो 10 मिठाइयां भी खा सकता है, सूक्ष्म लोक में भी खा सकता है, क्योंकि शरीर नहीं है, वासना लेता है। फीलिंग आपको यही आएगी कि मैंने 10 मिठाइयां खाई, लेकिन शरीर के ऊपर बोझ नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसमें अति इंद्रिय सुख है। और बाबा कहते हैं सुख क्या चीज है? सुख तो अति इंद्रिय सुख उस चीज का नाम है जो दुख सुख से ऊपर है। वास्तव में ब्राह्मण की सफलता क्या है? वास्तव में ब्राह्मण का अति इंद्रिय सुख क्या है? सुख में सुख, ये ब्राह्मण का अति इंद्रिय सुख नहीं है। ये तो दुनिया वाले भी सुख में सुखी हो जाएंगे, आज किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दो खुश हो जाएगा, लेकिन सुख और दुख बाबा ने डेफिनेशन बताई हुई है कि शिव बाबा सदा ही अति इंद्रिय सुख में रहता है एक प्रकार से, क्योंकि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, ना वो खाता है, वासना लेता, और ब्रह्मा बाबा जब तक ना हो वो भी नहीं ले सकता। तो हमें भी, हम आत्मा हैं, हमें अपना सूक्ष्म शरीर रखेंगे तो जिसको कहा जाता है दुख और सुख से न्यारा, हानि और लाभ से ऊपर, जय और पराजय से ऊपर, मान और अपमान से ऊपर, वो आत्मा सदा अति इंद्रिय सुख में रह सकती है। अगर आप सुख में भी फंस गए, अरे वाह मैंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, मेरे प्रोग्राम में इतने लोग आए, चीफ मिनिस्टर आ गया, गवर्नर आ गया, मैंने किया, देखो मैंने कितनी समझदारी की, फलाने को ये किया, तो आप सुख में आ गए ना, तो फिर आपको दुख से आप बच नहीं सकते। इसलिए दुख और सुख से न्यारा शिव बाबा क्या करता है, शिव बाबा कहता है देखो स्थापना मैं करता हूं लेकिन मैं सतयुग में भी नहीं आता। कुछ सोच, सबसे ज्यादा हमको सिखाने वाला बुद्धिवानों की बुद्धि शिव बाबा है, तो हम शिव बाबा को अगर फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो फादर, तो क्या करें? कि शिव बाबा कहते हैं मैंने तुमको बता दिया है, अगर तुम सतयुग में भी आ गए तो कलयुग में जरूर आना पड़ेगा। मैं सारी स्थापना कराता हूं लेकिन खुद नहीं करता हूं, बच्चों से कराता हूं। इसीलिए मेरी पूजा के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है। क्यों? इतना न्यारा है। चलो हम इतना तो नहीं बन सकते, हमारा अपना अपना एक्टर का पार्ट फिक्स है, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड तो बन सकते हैं ना। श्री कृष्णा कौन था? लॉर्ड, नेक्स्ट टू गॉड। तो भगवान कहता है कि नेक्स्ट टू गॉड ब्रह्मा बाबा बने, सारे ही ब्राह्मण नेक्स्ट टू गॉड है, नंबर वाइज। तो हम नेक्स्ट टू गॉड का मतलब क्या है कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है। अगर किसी को कहा जाए तूने ये बनना है तो उसको प्रॉब्लम आती है कि मैंने बीए पास करना है, मैं अभी बीए पास नहीं हूं तो मेहनत लगेगी। अगर कोई कहे कि तुझे बीए की डिग्री तो है ही, तू तो राजकुमार है, खाली स्कूल में जाके हाजिरी लगवाया कर, तेरी डिग्री तो फिक्स है, तो वो व्यक्ति बड़ा इजी लेता है। तो बाबा ने कहा हुआ है कि आप बच्चे आत्मा सत्य चित और आनंद स्वरूप हो के नहीं, हम आत्मा हैं कि नहीं? पहला लेसन तुम्हारा आत्मा है। तो आत्मा का जो गुण है वो आनंद स्वरूप है, ठीक है। अब आनंद जो है अति इंद्रिय सुख को ही कहते हैं, क्योंकि आनंद स्वरूप ऐसा स्वरूप है हमारा जो दुख सुख से ऊपर है, प्रेम घृणा से ऊपर है, हानि लाभ से ऊपर है, जय पराजय से ऊपर है, मान अपमान से ऊपर, आनंद स्वरूप। अगर आप प्रेम का नाम लेंगे कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो कहीं घृणा भी जरूर होगी। इतना बेहद का प्रेम जैसे भगवान करता, गॉड इज लव, कि किसी से भी घृणा नहीं करता, वो है बेहद की स्टेज। लेकिन हम क्या करते हैं, एक लाख से प्रेम करेंगे, एक से कम प्रेम करेंगे, तो गड़बड़ हो गई ना, प्रेम स्वरूप तो नहीं रहे। जब वो एक सामने आएगा तो हमारे चेहरे की रौनक उतर जाएगी, ये आ गया, कंपटीशन करेंगे, ये मेरे से अच्छा है, मैं इससे अच्छा हूं, ये है वो है। तो बाबा कहता है आनंद का उल्टा नहीं होता, हर चीज का उल्टा होगा, शांति का उल्टा अशांति होगा, सुख का उल्टा दुख होगा, प्रेम का उल्टा घृणा होगा, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं है। इसलिए अगर हम आत्मा अपने आनंद स्वरूप की स्थिति में रहें, उसमें केवल क्या करना होता है, मैं को हटाना बस। तो बाबा ने हमें सेंटर खोल के दिए, बाबा ने हमें घर में बीके बनाया। बीके का मतलब क्या है, मैं नहीं है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, कहीं भी दुनिया में हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा सब कुछ, साधन संबंध संपर्क सब बाबा के निमित्त है, हम उसको सरेंडर हैं। अब वो जाने हम तो क्या होता है, क्योंकि हम बीच में मैं करते हैं तो दुख आता है तो हमें फील होता है, सुख आता है तो हम उसमें फंस जाते हैं। तब बाबा कहते हैं ये कर्मातीत अवस्था नहीं है। तो हमको इतना मार्जिन है कि सभी बच्चे सारा टाइम संगम पर अति इंद्रिय सुख में रह सकते हैं, और आप सबको अनुभव होगा कि कभी ना कभी हम अति इंद्रिय सुख में रहे। मेरे सामने एक बहन अव्यक्त बाबा के सामने गई, और बोली कि बाबा मेरा योग लगता है कि नहीं लगता, मेरा योग आप तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, बाबा से पूछ रही है। तो बाबा मुस्कुरा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्ची तुझे क्या महसूस होता है? कहती कभी कभी तो महसूस होता है कि लगता है। तो बाबा ने कहा जैसे कभी कभी महसूस होता है तुम समझ लो कि उसी अनुभव के आधार पर हर वक्त समझो लगता है। तुम्हारा योग तो तुमने मन में सोचा और मेरे पास पहुंच जाता। बाबा की जो बाबा का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो दूसरी तरह का है। आप अपने घर से 10,000 रुपए लेकर चले कि मैं जाके माउंट आबू में देने, अच्छा आपके कब जमा होंगे? आपके माउंट आबू में आकर जब इशू बहन को देंगे तब जमा होंगे या जब आप चले जब जमा हो जाएंगे? क्या ख्याल है? हाँ? बीच में मान लो मेरा शरीर ही छूट जाए, मैं आबू पहुंचू ही ना, तो मेरे जमा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। इसलिए बाबा कहता है अगर तुम ये भी कह दो आज मेरा योग नहीं लगा तो भी मैं तुम्हारे योग में जमा कर लेता हूँ। तो कितनी वंडरफुल बात है कि बाबा तो अकाउंट खोल के बैठा है कि बच्चा कुछ भी बोले मैं उसके अकाउंट में जमा करूं। हम उसको काउंटिंग में काट देते हैं कि शायद नहीं लगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो हम अपने आप को कम धन वाला महसूस करते हैं कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं। तब बाबा कहता है कि हर बच्चा मैं ऊपर से कंट्रोल करता हूँ, तुम्हारी नैया का खवैया मैं हूँ, हम अपनी नैया के खवैया नहीं हैं। कभी भी हम ये कोशिश करें कि हम अपनी नैया के खवैया हैं तो आपको मेहनत बहुत लगेगी, प्राप्ति कम होगी, कभी ऐसी होगी जो आप थक जाए, अरे भाई इतनी मेहनत करी हम तो थक गए। तो बाबा ने आज क्या कहा, थकने का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि मेहनत ही उसको चेंज कर दो तो मोहब्बत बन जाती है और इधर चेंज कर दो तो मेहनत बन जाती है, वही काम। अब जैसे मान लो आप सुन रहे हैं मैं बोल रहा हूं, थकेगा कौन? थकेगा कौन? आप थकेंगे ना, क्योंकि मैं तो बोलता जाऊंगा, मुझे खुशी हो रही है। तो बाबा ने क्या सिखाया है कि ब्राह्मण को अगर ये समझ ले, पहली बात तो मेरा शब्द हटा दे, दूसरा हर चीज दूसरों के लिए है, तो आपका बढ़ेगा भी और आपको थकावट का तो नाम ही नहीं होगा, तो खुशी होती है देने में। और केवल संगम युग पर आप दे सकते हैं, ये भी खास बात है। आप सतयुग में जाके किसको ज्ञान देंगे? कोई लेगा? कलयुग में देंगे वो भी नहीं लेगा, उसका पार्टी नहीं है। सतयुग में देंगे वो भी नहीं लेगा, तो क्यों कब दे ले सकते हैं संगम पर? इसलिए बाबा कहते हैं देवता सिर्फ संगम में ही बनते हैं, देवलोक में तो बन गए, सतयुग में जो बन गए। तो हमको बाबा ने जड़ में बिठाया, बाबा ने हमको कल्प वृक्ष का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैं हूं इसका बीज और आप हैं बच्चे इसकी जड़, और तना भी इस सतयुग में देवताओं का है लेकिन जड़ में आप हैं। तो जड़ का क्या काम होता है? बीज से शक्ति लेना और सारे वृक्ष को देना। और केवल बाबा ने यह भी कहा हुआ कि सिर्फ बीज काफी नहीं है, बीज के साथ और भी चीजें चाहिए होती हैं। जैसे आप किसान करता है धरती को नरम करता है तो धारण करने वाली धरती चाहिए, अगर सीमेंट के फर्श पर आप बीज रख देंगे वो उगने वाला नहीं है। फिर बाबा कहता है ज्ञान का गंगा जल उसमें डालना है, हर पौधे को पानी चाहिए। फिर बाबा कहता है योग की धूप उसको देनी है और अटेंशन रखना है कि कोई चिड़िया विड़िया उसको खा न जाए, तब वो पौधा फैलता है। तो हम लोग जड़ में हैं, हमारा काम ही है, हर मुरली में बाबा कहेगा उड़ते रहो صرف یہ نہیں کہے گا اڑتے رہو اڑاتے رہو، خوش رہو خوشی بانٹو، گیان کو بانٹو. تو ہمارا بزنس ہی ایسا ہے جس میں دینے سے بڑھتا ہے. بابا نے ہم بچوں کو وہ بزنس سکھایا جس میں دینے سے بڑھتا ہے، اور دنیا کے جتنے بزنس ہیں اس میں دینے سے گھٹتا ہے. اس لیے لوگ ڈرتے ہیں. مان لو کوئی مجھے کہے غریبوں کو کمبل بانٹ دو تو کیا ہوگا، میں بانٹ سکتا ہوں؟ نہیں. ایک باری مجھے یاد ہے، اوم شانتی بھون بن رہا تھا تو گورنمنٹ نے کنسٹرکشن روک دیا کہ ماؤنٹ آبو میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتا، پہاڑی علاقہ ہے. ہمارا اوم شانتی بھون بننا تھوڑا سا رہتا تھا، تو مجھے بہنوں نے بھیجا کہ جاؤ سروہی میں جاؤ اور کلیکٹر سے پرمیشن لے کے آؤ. اب میں اور بناسی بھائی ڈاکٹر، گرمیوں کے دن تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر کو ساتھ لے جاؤ. گئے تو کلیکٹر تھے، نام ان کا کلیکٹر، تو مجھے بولے کہ برہما کماریاں غریبوں کے لیے کیا کر رہی ہیں. تو میں نے کہا جی غریبوں کے لیے کرنے سے آپ کا بھاو کیا ہے؟ تو میں نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا. ہمیں جس اسکول میں ہم پڑھتے تھے بچپن میں جو سنسکار پڑ جاتا ہے نا، وہ سنسکار پکا ہوتا ہے. ہمارے اسکول میں ہم کو سکھایا جاتا تھا کہ ناخن کاٹ کے رکھنے اور رومال ہمیشہ جیب میں رکھنا. آج بھی آپ دیکھیں گے میرے ناخن کٹے ہوئے ہیں اور یہ رومال میری جیب میں ہے. اچھا میں نے نکالا تو میں نے کہا جی کلیکٹر صاحب، اگر ہم نے غریبوں کو ایک رومال بھی دینا ہو، صرف ہندوستان میں کتنے غریب ہیں، اور ایک رومال ایک ٹائم دینے سے وہ امیر ہونے والے نہیں ہیں، لیکن کیا آپ کے خیال میں برہما کماریوں کے پاس اتنا کپڑا اتنا ہے جو سب کو رومال بانٹے اور اس سے بھی ملے گا کیا ان کو؟ اچھا پھر میں نے ہنسی میں کہا آپ کا نام کلیکٹر کیوں ہے؟ آپ کا نام تو ڈسٹریبیوٹر ہونا چاہیے. ہنسنے لگ گیا. تو میں نے کہا آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ کو غریبوں کو دینا چاہیے، آپ ہم کو کہہ رہے ہیں. پھر میں نے وہاں کی بہن کو بلایا، میرے ساتھ ہی تھی، میں نے کہا بتاؤ کہ ہاں کتنے ہمارے، وہ ڈیٹیل کی بات. تو کہنے کا بھاو یہ ہے، اس نے پھر ہمیں فٹافٹ پرمیشن دے دی کہ آپ بنائیے اپنا سان. تو ہم لوگوں کو ڈیوٹی بابا نے یہ دی ہے، تم کو دینا ہے گیان ہے. اب گیان آپ کسی کو دیں گے تو آپ کا گیان گھٹ جائے گا کیا؟ جیسے ہم دیپک جلاتے ہیں انوگریشن پر، ایک سے دوسرا جلاتے ہیں تو پہلے دیپک کی لائٹ گھٹ جاتی ہے کیا؟ نہیں. تو گیان ایسی چیز ہے جو آپ دیں گے تو آپ کا آپ کے پاس رہے گا اور بڑھے گا. اچھا یوگ میں آپ نے کسی کو ودھی سکھا دی کہ بابا کو ایسے یاد کرو، تو آپ کی ودھی کیا کم ہو جائے گی؟ نہیں، وہ بھی یوگ لگائے گا. اچھا دیوی گنوں کی دھارنا ہے، ایک گلاب کے پھول کو کوئی خوشبو لے لے تو گلاب کے پھول کی خوشبو گھر جاتی ہے کیا؟ اس میں تو اتنی رہتی ہے. آپ گلاب کے باغیچے میں جائیے، سیوا کا تو مطلب ہی ہے دینا. تو ہمارے سارا بزنس دینے کا ہے، اور دینے سے ہی ہمارا بڑھتا ہے. تو بابا نے کہا میں نے آپ کو جڑ میں رکھا ہوا ہے، اتی اندری سکھ ملے گا ہی دینے میں، بنا دیے آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو ادھیکار ہے، آپ کے پاس وہ چیز ہے، پرنتو آپ دیں گے تو ملے گا. اور اس کے بیچ میں بابا کہتا ہے صرف میں آتی ہے. اگر ہم دیا اور میں کر دیا تو جیسے وہ چیز کا نا ویلیو گھٹ کے لیمٹ میں آ جائے گی. بے کو ہٹا دیں، یا تو ہمارا یا بابا کا، اور بے حد کی درشٹی رکھیں تو ہر وقت ہم سوتے جاگتے اتی اندریہ سکھ میں رہ سکتے ہیں. لیکن بابا کہتا ہے کہ آپ مایا کے سب سے پرانے گاہک ہیں. سب سے پہلے مایا کی دکان میں کون گیا تھا؟ دوآپر میں کرائسٹ گیا تھا، محمد گیا تھا، گرو نانک گئے تھے، وگیانک گئے تھے، یا ہم گئے تھے. تو اتنے پرانے گاہک کو آپ کے خیال میں مایا آسانی سے چھوڑ دے گی؟ وہ کہے گی میرا پرانا گاہک ہی چھوڑ گیا تو باقیوں کا کیا ہوگا. اس لیے راون کی لنکا بھی بہت اٹریکٹیو گائی گئی ہے. تو آج مایا آپ دیکھیں گے اتنی کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح برہمن کو پھنسا لو. اب برہمن کو تو تیسری آنکھ ہے، اس کو پتا ہے इस दुनिया में कुछ है नहीं, लेकिन वो फिर भी धोखा देके धूल डाल देती है। आप मुझे बताओ, सतयुग में कोई भी खराब चीज होती है जो आंखों को अच्छी ना लगे, जैसे बिच्छू है, कानों को अच्छी ना लगे जैसे नॉइज होता है, कोई भी खराब चीज सतयुग में होती है? हैं जी, जो कहते हैं नहीं होती है, जरा हाथ उठाइए। सतयुग में कोई भी खराब चीज होती है या नहीं होती है? अच्छा, ठीक है। अब इसको उल्टा कर लो, कलयुग में कोई अच्छी चीज हो सकती है? हो सकती है। अच्छा, क्या हम ऐसा समझते हैं कि कलयुग में अच्छी चीज नहीं हो सकती, या सोचते हैं सेब खाना बड़ा अच्छा है, इससे हेल्थ बनती है? हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं ये धोखा है कि अगर सतयुग में खराब चीज नहीं हो सकती तो कलयुग में अच्छी कैसे हो सकती है। और बाबा कहते हैं कलयुग को तो वरदान है कि कलयुग में आप अच्छी चीज होगी भी तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। आपके पास हीरे का नेकलेस है, आप हीरे का नेकलेस पहन के माउंट आबू आओगे या नहीं? घर रख के आओगे। आपके किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है तो उसको साथ में डायबिटीज हो जाएगी कि तू शुगर नहीं खा सकता या तू घी नहीं खा सकता। तो कलयुग में मामला ही ऐसा है। बिजनेसमैन के पास बहुत बड़ी कार होगी, उसको यूज नहीं करेगा, टैक्सी में जाएगा कि कोई मेरे को पकड़ लिया या मेरे बेटे को किडनैप कर लिया तो मुसीबत आ जाएगी, या इनकम टैक्स वालों ने देख लिया तो मेरे अकाउंट देखना शुरू कर देंगे। तो ये कलयुग को वरदान है, लेकिन सोने की लंका है। इसलिए बाबा कहते हैं सोने की लंका की जगमग से बचना है। यात्रा मैंने यात्री का मुंह जिधर होता है दूसरी तरफ पीठ हो जाती है। हम सब कहते हैं हम यात्री हैं, तो क्या हमारी सचमुच पीठ कलयुग की तरफ है, या हम मुड़ मुड़ के कभी उधर भी देख लेते हैं उधर भी देख लेते हैं? तो जो दो बेड़ी का सवार होता है वो लटक जाता है। इसलिए त्रिशंकु का है, अपने में शंका करना, परिवार में शंका करना, या बाबा के किसी काम में क्वेश्चन करना, तो हम दुविधा में है। तो अपना मुंह यात्रा की तरफ रखें, पीठ इधर रखें, तो आपको अति इंद्रिय सुखी सुख और कुछ है ही नहीं। ओम शांति।